आज है 25 नवंबर दिन सोमवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान पर निर्णायक हो सकता है आज का दिन, निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर।
बिल्कुल, MLA's की मांग है कि हमें सुरक्षित जगह पर रखा जाए, हमको तोड़ने का प्रयास हो रहा है।
क्या अजीत पवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे शरद पवार?
अजीत पवार जी का ये कहना है कि मैं मिनिस्टर हूं और पार्टी में हूं, इसका मतलब ये है कि पार्टी को लीड वो करना चाह रहे हैं, न कि शरद पवार जी को करने देना चाह रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 3 सीटों पर आज होगा उपचुनाव, ममता बनर्जी के लिए नाक का सवाल। वस्तुल्ला खान की डायरी के साथ सुनिए साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी भी, और बताएंगे आपको दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। महाराष्ट्र के लिए आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस, NCP और शिवसेना की उस याचिका पर फैसला सुना सकता है जिसमें देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से इस याचिका पर सुनवाई होगी। हांगकांग में स्थानीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान आने लगे हैं। रुझानों में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों को चीन समर्थक प्रतिद्वंदियों के मुकाबले शानदार जीत मिलती दिख रही है। लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवार अब तक 3/4 से भी ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। BBC संवाददाता का कहना है कि ये हांगकांग के एक्टिविस्ट की उम्मीद और कल्पना से भी ज्यादा बेहतरीन है। इस चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ और वोटर टर्नआउट लगभग 70% रहा। चुनाव मामलों के कमिश्नर जस्टिस बर्नाबस फंग को सुनिए।
In the morning, we have almost 3 times the turnout.
सुबह वोटर टर्नआउट 2015 के चुनाव के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो गया था। हमें शिकायतें मिली कि लोगों को कतारों में लगकर देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले। ये थे हांगकांग में चुनाव मामलों के कमिश्नर जस्टिस बर्नाबस के शब्द। इस चुनाव को हांगकांग की नेता और चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम के लिए एक शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। लोकतंत्र समर्थक समूहों को उम्मीद है कि महीनों की अशांति और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुए इस चुनाव के नतीजों से चीनी सरकार को एक संदेश मिलेगा। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई अपने अगले चरण में पहुंच गई है। ये जानकारी सुनवाई की अगुवाई करने वाले डेमोक्रेट सांसद एडम शिफ ने दी है। एडम शिफ हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख भी हैं। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान जो बातें पता चली हैं उनकी लिखित रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एडम शिफ ने एक प्रेस वार्ता में कहा, अभी काफी काम किया जाना बाकी है, लेकिन हमने इसके कई सबूत जुटा लिए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव में विदेशी दखलंदाजी को जगह दी। हम मानते हैं कि ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। ये थे हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख एडम शिफ के शब्द। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अगले 6 हफ्तों में अपनी लिक्विड पार्टी के लिए नेता का चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। नेतन्याहू का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब उनकी ही पार्टी के एक प्रतिद्वंद्वी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नेतन्याहू के लिए मुश्किल भरा वक्त है क्योंकि पिछले हफ्ते ही उन पर 3 अलग-अलग मामलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि नेतन्याहू जब तक दोषी करार नहीं दिए जाते उन्हें पद छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों ने उन्हें कमजोर जरूर कर दिया है। BBC ने चीनी सरकार के कुछ कागजातों की पड़ताल की है। इससे पता चला है कि चीन के पश्चिमी हिस्सों में लाखों लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए कड़ी सुरक्षा वाली जेलें बनाई गई हैं। इन जेलों में मुख्य तौर पर वीगर मुसलमान समुदाय के लोगों को रखा गया है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत ने BBC की इस रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी संदीप सोनी के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना सभी की नजरें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जहां कल हुई सुनवाई आज भी जारी रहेगी और बहुत मुमकिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट सुने।
महाराष्ट्र में रातों रात बनी नई सरकार के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत घड़ी की सुई से भी तेज चल रही है। कल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में बनी नई सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना और 4 नोटिस जारी कर दिए। ये नोटिस केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आज सुबह 10:30 बजे तक 2 तरह के दस्तावेज भी मांगे हैं। पहला दस्तावेज है विधायकों का वह समर्थन पत्र जिसे देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को सौंपा था, और दूसरा राज्यपाल की ओर से सरकार बनाने का न्योता देने समेत तमाम दस्तावेज। इस बीच कल महाराष्ट्र में बैठकों का दौर भी चलता रहा, साथ ही तमाम दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने अपने सभी विधायकों को एक साथ रखने की बात कही।
बिल्कुल, MLA की मांग है कि हमें सुरक्षित जगह पर रखा जाए, हमको तोड़ने का प्रयास हो रहा है, और टूटने वाले तो है नहीं, पर उन्होंने कहा कि हमें बुलाकर बात करने की कोशिश भाजपा की ओर से हो रही है, तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए अब सब चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठा रहेंगे तो बेटर है।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता आशीष शेलार से जब पत्रकारों ने इस संदर्भ में सवाल किया और ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया तो उन्होंने जो जवाब दिया वह भी दिलचस्प है।
अगर महाराष्ट्र में कोई ऑपरेशन चल रहा है तो ऑपरेशन देवेंद्र और ऑपरेशन अजीत पवार है।
इस बीच दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने कल बीजेपी के विधायकों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच महाराष्ट्र में सबसे कीमती अगर कोई बन गया है तो वह है NCP के जीते हुए विधायक। यही वजह रही कि NCP कल देर शाम तक अपने विधायकों को एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट करती रही। NCP की तरफ से यह आरोप भी लगाए गए कि होटल के पास कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में घूम रहे हैं। वहीं शरद पवार और अजीत पवार के बीच कल ट्विटर वॉर भी देखने को मिला। अजीत पवार ने अपने ट्विटर हैंडल पर डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र लिख दिया है। हालांकि उन्होंने खुद को NCP का ही सदस्य बताया है और कहा है कि NCP BJP के साथ मिलकर 5 साल तक मजबूत सरकार चलाएगी। वहीं NCP प्रमुख शरद पवार ने इसके जवाब में ट्विटर पर ही लिख दिया कि NCP BJP के साथ नहीं है। इस पूरी गहमा गहमी के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल दावा कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अब देरी हो जाने की बात कह दी है। महाराष्ट्र में जारी इस खींचतान पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, पूरे हालात तभी बदलेंगे जब जल्दी से जल्दी सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा।
ये बात में तो दम है कि क्लीनेस्ट वे आज की सिचुएशन है कि जल्दी से जल्दी आप ट्रस्ट वोट करा दो, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, सरकार बन जाएगी या नहीं बनेगी, दूसरे को चांस मिलेगा या प्रेसिडेंट रूल होगा या आगे जाके इलेक्शन होंगे, बस रास्ता खुल जाए।
महाराष्ट्र में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट कब होगा और उसमें किसे कामयाबी मिलेगी, यह सब आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
और आइए सीधे चलते हैं मुंबई। मुंबई को यूं तो भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी घटनाक्रम ने मुंबई को एक तरह से राजनीतिक राजधानी भी बना दिया है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। BBC संवाददाता मयूरेश कोन्नूर मुंबई से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मयूरेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि NCP अपने विधायकों के ठिकाने बदल रही है, कभी ये होटल कभी वो होटल, क्या वजह है इसकी?
इसकी एक वजह तो NCP ने खुद ही बता दी है कि उनका कहना है कि उनका जिस रेनासो होटल में वहां पर वो जिनको उनके विधायकों को रखा था तो वहां पे BJP के जो मिडिलमैन है वो उनको उनके विधायकों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पे आ रहे हैं, पुलिस भी वहां पे नॉर्मल सिविल ड्रेस में वहां पे जा रही है, तो इसकी वजह से कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है, तो इसकी वजह से उनका ये कहना है कि BJP उनके विधायकों को भगाना चाहती है और इसलिए वहां पे रहना ठीक नहीं, इसलिए कल रात उन्होंने और एक जगह पे होटल हयात में उनको शिफ्ट कर दिया है क्योंकि उनको साथ में इकट्ठा रखा जाए और किसी भी उनका संपर्क ना हो पाए।
मयूरेश, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। बीजेपी के नेता हैं नारायण राणे, जब वो ये कहते हैं कि बाजार में अभी कई विधायक हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए?
इसका मतलब तो सीधा यही है कि बीजेपी सिर्फ अजीत पवार के ऊपर या तो उनके साथ जो एनसीपी के विधायक आए हुए हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं है। शायद नारायण राणे यही सजेस्ट कर रहे हैं कि उनके अलावा जो बाकी विधायक हैं शिवसेना और कांग्रेस, तो उनसे भी उनके भी कुछ जो विधायक हैं वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। शिवसेना के गुट से पहले ये खबर आ चुकी थी। नारायण राणे ने इससे पहले भी जब कोई भी हल नहीं निकल रहा था तब भी एक बार उन्होंने बयान दिया था और वो कह रहे थे कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है सरकार बनाना है। जिस वक्त अभी भी शिवसेना और बीजेपी का झगड़ा चल रहा था और अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद शिवसेना के कुछ लोग जो है वो फूट कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो उनके ये जो नया बयान आया हुआ है तो इससे यही प्रतीत होता है कि शायद और भी कोई विधायकों से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ आ सके।
मयूरेश, एक बात और बताइए, जो मुंबई कर हैं, जो आमची मुंबई कहते हैं, जिसने वोट दिया है विधानसभा चुनाव में, वो आम आदमी महाराष्ट्र में राजनीति में मचे इस घमासान पर क्या सोचता है, क्या कहता है, कुछ बता पाएंगे?
सबसे पहली तो बात यह है कि ऐसा कभी भी महाराष्ट्र ने इससे पहले कभी देखा नहीं है और शॉक में जरूर है। मेरी किन मेरे दोस्तों से बात हुई है, कितने कई लोगों से बात हुई है और पत्रकारों से लेकर आम आदमी तक सब लोगों को जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने किसी उसकी कल्पना नहीं की थी, हालांकि वो हुआ है। और अब सब लोग जो है वो या तो कुछ लोग जो है वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अब वो कुछ भी हो सकता है, इस तरह की से देख रहे हैं, जिस पर विश्वास नहीं है वो भी हो सकता है। और कुछ लोग जो है वो नॉर्मल सी जिंदगी जो है, जिस जो पहले सब कुछ झगड़ा इतने महीनों में हो रहा है वहां उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे और अब यहाँ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जो बयान है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी उनके रिएक्शन से वो आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि इस तरह का राजनीतिक नाटक महाराष्ट्र ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। 1977 की बात की जाती है जब कांग्रेस का सरकार फूटकर शरद पवार ने एक सरकार उस वक्त बनाई थी, लेकिन वो पीढ़ी अब रही नहीं, वो जनरेशन अब रही नहीं, ये नई जनरेशन है, उसके लिए तो इस तरह की राजनीति उन्होंने इससे पहले कभी देखी ही नहीं थी।
जानकारी दे रहे थे मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोनूर। और आइए नजर दौड़ाते हैं दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों पर। बताएं सिंधु, तमाम अखबार आपके हाथ में हैं।
संदीप, आज भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सियासत ही है अखबारों में। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर जो तस्वीर छपी है वो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अशोक चव्हाण की है। ये तस्वीर तब की है जब वो दोनों सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए और पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले, संजय राउत और रोहित पवार की तस्वीर है। ये तस्वीर एनसीपी विधायकों की एक बैठक के बाद की है और इस तस्वीर में चारों ही काफ़ी हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर तो आज सुप्रीम कोर्ट ही साफ करेगा। नवभारत टाइम्स का शीर्षक बॉलीवुड फिल्म गली बॉय से प्रेरित लग रहा है। अखबार पूछ रहा है किसका टाइम आएगा। और कोलकाता से छपने वाले अखबार द टेलीग्राफ की बात करना चाहूँगा। टेलीग्राफ ने बड़ी हार्ड हिटिंग और व्यंग्यात्मक हेडिंग लिखी है। अखबार ने लिखा है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, होटल इज द सोल इंस्टीट्यूशन वेयर डेमोक्रेसी इज सेफ। यानी होटल ही आधुनिक भारत के मंदिर हैं, होटल ही वही एकमात्र संस्था है जहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है। तो होटल में जैसे विधायकों को और होटल और रिजॉर्ट में ले जाकर डील की जाती है, उस ओर इशारा कर रहा है अखबार। शिवसेना के मुखपत्र सामना पर भी नज़र डाली तो ये काफ़ी तड़कता भड़कता नज़र आ रहा है। अखबार ने कई सुर्खियां लगाई हैं बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे सावधान रहो सरकार अपनी ही आएगी, शिव प्रहरी तैनात हैं चोरों की खैर नहीं, साम दान दंड भेद सरकार चुराने के हर भाजपाई दांव में छेद। अमर उजाला ने बताया है कि अजित पवार ने कल एक घंटे के अंदर 21 ट्वीट किए। पहले जब पीएम मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण की बधाई दी तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो बहुमत साबित करके दिखाएंगे। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद ट्वीट किया कि मैं एनसीपी में हूँ, हमेशा एनसीपी में रहूँगा और शरद पवार हमारे नेता हैं। जनसत्ता ने एक दिलचस्प बात बताई है, वो ये कि इस साल ये तीसरी बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी वाले दिन किसी न किसी मामले पर विशेष सुनवाई करनी पड़ी। पहली बार ये 20 अप्रैल को हुआ जब पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। फिर अयोध्या मामले का फैसला सुनाने के लिए 9 नवंबर को और अब 24 नवंबर यानी कल फिर सुप्रीम कोर्ट छुट्टी वाले दिन बैठा। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है जिसका जिक्र करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने से बचना चाहिए।
शुक्रिया सिंधु। महाराष्ट्र के इस पूरे घटनाक्रम में दल बदल कानून का बार बार जिक्र हो रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण और पत्ते जिस तरह से खुल रहे हैं और समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उसमें दल बदल कानून भी कई जगहों पर कमज़ोर सा पड़ता नजर आता है। इसके प्रावधानों को बारीकी से समझने के लिए हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने हिमाचल प्रदेश में संविधान मामलों के जानकार प्रोफेसर चंचल सिंह से बात की।
संविधान का 10वीं सूची है, 10th शेड्यूल, उसके हिसाब से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से गिव अप करता है, छोड़ता है और कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो लायबल हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। इस केस में थोड़ा सा अभी भी सस्पेंस है और संवैधानिक पोजीशन बहुत क्लियर नहीं है कि आज के डेट में जबकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और मेंबर्स ने अभी तक ओथ नहीं लिया है लेजिस्लेटिव असेंबली का एज ए मेंबर, तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा या नहीं। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा तो कैसे लागू होगा, इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट की विवेचना अभी तक नहीं है इस पॉइंट पे कि अभी तक मेंबरशिप की ओथ नहीं हुई है।
अभी की जो सिचुएशन है महाराष्ट्र में, अभी अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं एनसीपी का ही सदस्य हूं, एनसीपी के साथ हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री भी हूं, जबकि जो पार्टी के प्रमुख हैं शरद पवार वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं, हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना रहे हैं। अब ऐसे में क्या शरद पवार अजीत पवार को बाहर कर सकते हैं पार्टी से?
अगर किसी पार्टी का मर्जर होता है या डिवीजन हो जाता है 2/3 से ज्यादा, तो अजीत पवार जी का ये कहना है कि मैं मिनिस्टर हूं और पार्टी में हूं, इसका मतलब ये है कि पार्टी को लीड वो करना चाह रहे हैं न कि शरद पवार जी को करने देना चाह रहे हैं। इसमें एक क्लॉज है 10th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल कहता है कि इन केस ऑफ मर्जर जहां 2/3 से ज्यादा मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव पार्टी के, एनसीपी के, अगर 2/3 से ज्यादा मेंबर्स माइग्रेट करते हैं या चले जाते हैं उनके साथ, तो उस केस में ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लायबल नहीं होंगे।
मतलब एक तरीके से तो विधायक दल के नेता भी वही चुने गए थे पहले, तो उस तरीके से तो ये लायबल होते ही नहीं अभी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर,
बस इतने कि वो प्रूव कर सके कि उनके पास 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट है उनके पार्टी के 2/3।
हालांकि अब जो है एनसीपी ने उनको अपने विधायक दल के नेता से भी हटा दिया है, अब इस वाली कंडीशन में अगर एनसीपी चाहे कि इनको अब पार्टी से हम बाहर करना चाहते हैं, तब इनके ऊपर ये कानून लगता है कि नहीं लगता है?
लग जाएगा। पहले वाले मर्जर वाले केस में 2/3 मेंबर इनके साथ जाते हैं तभी एक उपाय है कि इनपे ये नहीं लगेगा।
ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है इसका फाइनल अथॉरिटी कौन होता है, मतलब कि किसके पास अधिकार हैं और किसके पास सीमाएं हैं इस कानून को लागू करने की?
यहाँ पे एक यूनिक सिचुएशन अभी भी महाराष्ट्र में है, जो लीगल पोजीशन ये है कि इसका फाइनल डिसीजन जो चेयर होता है उसका होता है, तो स्पीकर का डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा।
अभी तो यहाँ पे विधानसभा ही नहीं पूरी तरह से बनी है, उसमें जो है स्पीकर ही नहीं चुना गया है, तो अब इस टाइम पर अगर इस कानून का पालन करना पड़े तो उसका निर्णय कौन लेगा इस टाइम पर?
अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि स्पीकर किसी भी तरह से मनमाने तरीके से और बायस होके या इलविल से ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है, उन सब चीजों के लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी कस्टोडियन भी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट पालन करवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है।
संविधान मामलों के जानकार प्रोफेसर चंचल सिंह से बात कर रहे थे नवीन नेगी। पश्चिम बंगाल में आज 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नाक का सवाल बन गए हैं। राज्य में बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कौन सी हैं वो सीटें जहां आज मतदान होगा और इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहे, जानने के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने कोलकाता में मौजूद हमारे सहयोगी प्रभाकर मणि तिवारी से बात की।
आज जो पश्चिम बंगाल के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनसे एक मेदिनीपुर जिले में है खड़गपुर सदर सीट, एक उत्तर 24 परगना जिले में कालियागंज है और एक नदिया जिले में करीमपुर सीट है। ये चुनाव 2021 से पहले आखिरी चुनाव है जिनमें तृणमूल और भाजपा के लिए आपसी टकराव होगा, ये दोनों के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा है। जब वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो इनमें से एक एक सीट तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस को मिली थी। इस बार खास बात यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने फिर एक बार हाथ मिलाया है। 3 साल बाद से पता चलेगा कि क्या उनका जलवा कायम है या फिर जैसा कहा जा रहा है कि वे साइन बोर्ड में ही बदल गई हैं। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए कि लोकसभा चुनाव में इनमें से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे थी और 1 पे तृणमूल कांग्रेस आगे थी। इसलिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि किसके पैरों तले की जमीन कितनी मजबूत है और क्या भाजपा अपना लोकसभा का जो उसकी कामयाबी थी उसको बनाए रख पाई है या तृणमूल के पैरों तले जो जमीन खिसकी थी उसे वो दोबारा हासिल कर सकी।
कौन कौन से मुद्दे थे जो अभी तक इन 3 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव है उसमें उठाए गए?
मुद्दे जो तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने उठाए हैं प्रमुखता से वो एनआरसी है और इसके अलावा नागरिकता संशोधन विधेयक का जो जिक्र है। ममता ने इसी मुद्दे पे जोर दिया और तृणमूल के बाकी नेताओं ने भी कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को शरणार्थी बनाने की साजिश है ये और एनआरसी यहाँ लागू नहीं होगा। ये दोनों मुद्दे ही प्रमुख हैं।
यहाँ पे किस तरीके के समीकरण हैं जाति को लेकर, धर्म को लेकर?
हाँ, इनमें से जो करीमपुर और कालियागंज सीट है यहाँ दलित और मुस्लिम वोटर ही निर्णायक है और बाकी खड़गपुर में हिंदी भाषी वोटर है। वर्षों से कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, पिछली बार बीजेपी ने वह सीट कांग्रेस से छीन ली थी।
जानकारी दे रहे थे कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी। ये लगभग 100 साल पहले की बात है। रामप्रसाद बिस्मिल नाम के एक नौजवान ने एक नज्म के जरिए न जाने कितने नौजवानों में जोश भर दिया था और वो नज्म थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज भी ये नज्म नौजवानों में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर रही है। सुनिए पाकिस्तान से वस्तुल्लाह खान की डायरी।
फैज़ अहमद फैज़ की याद में मेला हर वर्ष ही लाहौर में होता है और इस मेले में सबसे ज़्यादा इकबार बानो की गाई वो नज़्म ही सुनाई पड़ती है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। पर इस बार फैज़ मेले में जिस नज़्म को सबसे ज़्यादा TRP मिली वो राम प्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी की 98 वर्ष पुरानी नज़्म सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सब जानते हैं कि शहीद आज़ादी भगत सिंह पे जो भी फिल्म या खेल बनता है उसमें ये नज़्म ज़रूर डाली जाती है, मगर इस वर्ष पाकिस्तानी युवाओं की नई पीढ़ी ने नस्ल दर नस्ल चलने वाली इस नज़्म को एक नई जिंदगी दी। कुछ सरफिरे नौजवानों ने फैज़ मेले में इस नज़्म को नारे की तरह गाया। इस भीड़ में सबसे जोशीली और ऊंची आवाज़ उरूज औरंगज़ेब की थी। तब से उरूज कम अज़ कम सोशल मीडिया की हद तक नई पीढ़ी के लिए उत्साह का निशान बन गई है। कोई भी देश जो बहुत देर से किसी सच्ची तब्दीली के लिए जूझ रहा हो, वहाँ अगर कोई महिला स्टार बन के उभरे तो इसका मतलब ये है कि परिवर्तन की भूख कितनी गहरी है। जैसे यमन में 2011 में जब अरब स्प्रिंग की लहर आई तो अली अब्दुल्ला साले की तानाशाही को चैलेंज करने वालों में तवक्कुल किरमान आगे आगे थीं। तवक्कुल को इसी वर्ष अमन का नोबेल इनाम भी मिला। JNU में जब 3 वर्ष पहले सरकारी दखलंदाजी के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो पाकिस्तानी छात्रों और छात्राओं में सबसे पॉपुलर 2 नाम थे, कन्हैया कुमार और शहला रशीद। दिसंबर 2017 में ईरान में हिजाब की सरकारी ज़बरदस्ती के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उसमें विदा मवाहिद की तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हुई। विदा ने तेहरान में एक ऊँची जगह चढ़ के अपने सफ़ेद स्कार्फ को झंडे की तरह फहराया। वो गिरफ्तार भी हुई मगर इस तस्वीर ने बाकी ईरानी औरतों को प्रेरित किया। पिछले अप्रैल में सूडान की राजधानी खरतूम में जिस नौजवान जत्थे ने सैनिक हेडक्वार्टर के सामने कई दिन धरना दिया, इस धरने को 22 वर्ष की सफ़ेद लिबास वाली एक लड़की आला सलाह लीड कर रही थी। बैरूत में करप्ट शासन और राजनीति के खिलाफ पिछले 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी महिलाएं सबसे आगे हैं। इनमें से एक महिला जिसने एक मंत्री के बॉडीगार्ड को किक मारी, उसकी चर्चा तो आज तक है। पाकिस्तान में मानवाधिकारों से जुड़ी वकील आसमा जहांगीर के बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान का सबसे दलेर मर्द थी। दो वर्ष पहले उनके देहांत के बाद कुछ अरसे एक कमी महसूस होती रही, मगर अब उरूज औरंगजेब, जलीला हैदर और ग्रेटा थॉमबर्ग जैसी लड़कियों को देख के लगता है कि जो परिवर्तन हमारी नस्ल ना ला सकी, शायद 21वीं शताब्दी के ये लड़के लड़कियां ले आएं और हम उन्हें ही कामयाब देख के थोड़ा सा खुश हो लें और अपनी नाकामियां भूल सकें थोड़ी देर के लिए ही सही।
पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की डायरी के बाद साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच में कल बांग्लादेश को खेल के तीसरे ही दिन एक पारी और 46 रन से हराकर गुलाबी जीत हासिल की। दरअसल पहली बार गुलाबी गेंद का अनुभव बांग्लादेश को रास नहीं आया और वो पहली पारी के आधार पर 241 रन से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में 195 रन पर सिमट गई। उनके मुशफिकुर रहीम ने 74 रन बनाए जबकि महमूदुल्ला 39 रन पर रिटायर हर्ट हुए। अल अमीन हुसैन ने 21 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश की पहली पारी को 106 रन पर निपटाया और उसके बाद कप्तान विराट कोहली के दमदार 136, चेतेश्वर पुजारा के 55 और अजिंक्य रहाणे के 51 रनों के सहारे पहली पारी में 347 रन बनाए, जो बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भारी और काफी साबित हुए। भारत के ईशांत शर्मा ने दूसरी पारी में 56 रन देकर 4 और उमेश यादव ने 53 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके साथ ही भारत ने ये टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की। ईशांत शर्मा 9 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। टेस्ट क्रिकेट के 142 साल के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी टीम ने लगातार चौथा टेस्ट मैच एक पारी के अंतर से जीता। और अब समीक्षा। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को क्या किसी की नजर लग गई है या उनकी कोरियाई कोच किम जू ह्यून के स्वदेश लौटने का खामियाजा वो भुगत रही हैं एक के बाद एक टूर्नामेंट में हार से उठे सवाल।
सिंधु, she becomes the first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships.
ये लम्हे तब भारत और पीवी सिंधु के लिए पहली बार आए थे जब उन्होंने इसी साल अगस्त में स्विट्जरलैंड में हुए विश्व बैडमिंटन टूर्नामेंट को अपने नाम किया।
Before year also I lost in the finals, so it was a very important win for me and I'm really very happy.
इससे पहले वो जुलाई में इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में जीती थी। बस इस साल यही उनकी दो उपलब्धियां हैं। कल ही समाप्त हुए कोरिया मास्टर्स में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इससे पहले वो हांगकांग ओपन में दूसरे, चाइना ओपन में पहले, फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल, डेनमार्क ओपन के दूसरे और कोरिया ओपन के पहले ही दौर में हारकर बाहर हुई। बाकी टूर्नामेंट में भी उनका यही हाल रहा। तो इसकी वजह क्या है? क्या वो फॉर्म में नहीं है, क्या फिट नहीं है, या फिर उन्हें विश्व चैंपियन बनाने वाली उनकी कोरियन कोच किम जू ह्यून का वापस चले जाना कारण है? पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना कहते हैं,
जिस तरह उन्होंने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था, लगता था कि पीवी सिंधु एक अलग स्तर के ऊपर पहुंच गई हैं। पर बहुत ही हैरानगी की बात है कि अभी तक 6 प्रतियोगिताएं, उनमें वो अलग अलग खिलाड़ियों से हारी हैं और एक खिलाड़ी से वो हारी हैं चाइनीज ताइपे की, 39 के ऊपर उनकी विश्व रैंकिंग।
खेल पत्रकार राकेश राव की पैनी नजर भी पिछले साल से ही पीवी सिंधु पर है।
सिंधु ने पिछले एक साल में सिर्फ 2 टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन वो कमाल के जीते हैं। इसके बीच में उन्होंने कुछ नहीं जीता। 17 इवेंट में से अगर आप 2 जीत रहे हैं और आप फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन क्या आप वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेल रही हैं? उसका जवाब सबके सामने है कि अभी तक हमने जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं उसमें वो वर्ल्ड चैंपियन की तरह तो कम से कम नहीं खेल रही हैं।
अब कोच तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनसे पहले पी गोपीचंद के कोच रहते, उन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक के अलावा ढेरों टूर्नामेंट जीते। पुरुष वर्ग में के कांत और महिला वर्ग में साइना नेहवाल का भी बुरा हाल है। ऐसे में पीवी सिंधु से ही भारत को उम्मीदें थी, जो फिलहाल उनका हाल देखते हुए पूरी होती नहीं दिखती। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुख्य समाचार पुनः सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की उस याचिका पर फैसला सुना सकता है जिसमें देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को चुनौती दी गई है। हांगकांग के स्थानीय चुनाव में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों को शानदार जीत मिलती नजर आ रही है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई अगले चरण में पहुंच गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।